कहा गया है द्वंद्व सहिष्णुता से, उन द्वंद्व रूपी यमलार गुण का उच्छेद भी प्रभु उस मन रूपी नंद और यशोदा के, तुम्हारे साथ बंधन रूपी बदकर के दामोदर होकर के और द्वंद्व उच्छेदन करके उसे बिल्कुल भक्ति के योग्य बनाने के लिए तिथिक्षु बना देते हैं कि भाई आज से तेरे सारे द्वंद्व समाप्त हुए। अन्य भी क्योंकि ये भागवत है, इसमें कहा है अत्र सर्गो विसर्ग इच्छो स्थानम भूषण भूतयो मनवंतरेशान कथा निरोधो मुक्ति राश्रय। तो ये दशम निरोध है भागवत प्राप्ति में, जितने निरोध हैं भगवान उनको दूर करते हुए उसको अगारी बढ़ाती हैं। एकादश में मुक्ति का वर्णन किया है। यदि प्रसंगानुगत कैवल्य शब्द का केवल मुक्ति ही प्रयोजन मान लिया जाए तो ये प्रसंग संगत मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि भागवत शास्त्र भी एक काव्य है और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प ध्याम भी काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, ऐसा साहित्य दर्पणकार ने कहा है। और सत्य पर निर्वतये मम्मट स्वयं तुम्हारे साथ का उसमें काव्य होते हैं, उसमें लिखते हैं कि काव्य हम यशस कृते व्यवहार विदेश नेतर क्षत सद्य पर निवृत कांता संवित उपदेश युजे। तो पर निवृत्ति और कांता संवित उपदेश युक्तता जो है वो हमारे भागवत आदि पुराणों में उपलब्ध है, इसलिए चतुर्वर्ग फल में जो तुम्हारे साथ परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसके लिए एकमात्र इसका प्रयोजन मानना जरा भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इसलिए केवल अनुभव आनंद वो भगवान कैसा है, केवल अनुभव से प्राप्त होती। तो केवल शब्द यहाँ अन्य सभी प्रकार के अद्वितीयता अनुभव में जैसे सिद्ध करता है, ऐसे केवल शब्द का अर्थ है अद्वितीय। भगवान श्री कृष्ण के समान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? कि भागवत का मूल चतुर्थ श्लोकी में भी यही है, जो वेशम अग्रे जो कुछ हो आगे वो मैं ही हूं। तो इसलिए केवल भगवान ही, यदि हम मुक्ति को अर्थ मानेंगे तो स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं कि सालोक्य सार सामी सारूप्यप्युत दीयमान गृहती बिना न सेवनम जना सारूप्य सालोप्य सामीप्याद में यदि भगवत सेवा संहित हो तब तो वो मुक्ति भगवत भक्तों के लिए ग्राह्य है, अन्यथा भगवत सेवा भीन वो मुक्ति भगवत भक्तों को ग्राह्य नहीं है। और इसलिए एकत्व को तो किसी भी प्रकार में स्वीकार ही नहीं किया। तो मुक्ति अर्थ मानना बिल्कुल प्रसंग संगत नहीं है, क्योंकि भागवत में कहा है अत्रानुवर्णते साक्षात भगवान हरिश्वर। इसमें तो पद पद पर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है और द्वादश स्कंद के अनुसार आश्रय रूप श्री कृष्ण ही इसके है। तो आश्रय जो कृष्ण है वही एकमात्र संसार में केवल अवशिष्ट वस्तु है, इसलिए केवल श्री कृष्ण तस्य भाव सेवा रूप कैवल्यम तदेव प्रयोजन। भगवान की सेवा जो है वही एकमात्र जीव का आत्मा का संसार का भागवत के उपदेश का शास्त्र का प्रयोजन है, यही कैवल्य का प्रयोजन का मतलब है नित्य मुक्ति पर।
श्री रामकृष्णाचार्य जी पधारे हैं। श्री बलदेवाचार्य आर्याचंद श्री बलदेवाचार्य गोकुल तत्समागत प्राचार्य गोकुल के प्राचार्य वैसे आचार्य ज्ञानादेकं भक्ति वर्णयत केवलीनांशेन श्री रामकृष्णाचार्य
श्री गोवर्धन नाथ पादयोलम अयंग वीन प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदार श्रीमद्वारवती शुभोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन् मन्मथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। यहाँ पर बालकृष्ण की ही चर्चा हो रही है। कैवल्य शब्द के जो आचार्य हैं हमारे श्री कृष्ण, उनका जन्म मथुरा में ही हुआ। और विचित्र बात तो ये है कि जिसकी हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो प्रभु रसो वैशा के रूप में हम भक्तजनों की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। रसो वैशा यम लब्ध्वा तृप्तो भवति अमृतो भवति आनंदो भवति। वो प्रभु मथुरा में पधारे, मथुरे त्रवर्णीयम त्रयितोपगरीयसी साधावत पर ब्रह्म ब्रह्म ही नाम अनुधावती। वो ब्रह्म जो आज जिससे रस स्वरूप रसात्मक अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं, और जिस कृपा के द्वारा भक्त वो अनवरत भक्ति में लीन होते हैं। भक्ति भी कलयुग में बतलाई है, भक्त रे कैव मुक्तदा कलौ नास्तेव 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 गतरन्यथा। अब वो भक्ति भी तीन प्रकार की आपने बताई, जैसे हमारे वृत्रासुर के भाव में है सुंदर, अहम हरे स्तव पादैक मूल तासानुदासो भवतास्मभूय मन स्मरेतां सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवात् कर्म करोतु कायः। भक्ति कौन सी करनी चाहिए, कायक वाचक मानसिक, तीन प्रकार से प्रभु की प्राप्ति होती है। कोई काय की भक्त सेवा से प्रभु को प्राप्त कर होता है, कोई वाणी की सेवा, कोई मानसी। तो वहां कहते हैं मानसी सा परामता। यदि कलयुग में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शारीरिक सेवा प्रभु की कर सके और प्रभु प्राप्ति कर सके, तो आप वाणी से भगवत गुणानुवाद भगवान का संकीर्तन उनको करें और उससे उस प्रभु की जो कैवल्य प्राप्ति है उसको करें। यदि वो भी ना हो सके, इतना भी समय नहीं, तो आप जहाँ भी जाते हैं आते हैं केवल मानसिक ध्यान कर लीजिए। मानसी जो सेवा है वो सबसे सर्वोच्च सेवा है। इसीलिए भगवान से वृत्रासुर ने प्रार्थना की कि प्रभु हमको तो आप काय की वाच की मानसी ये तीनों ही प्रकार की सेवा दें। मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, प्रभु कहें ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्त मुक्त है जाए। तो कैवल्य ले के प्रयोजन हमारी ब्रज भूमि के जो आज सर्वोच्च श्री कृष्ण है, जो यहाँ पर यहाँ जन्म ले लेता है, वो भी आज उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। चाहे वो तप करे या सिद्धि करे, योग करे कि नहीं करे, मथुरा और ब्रजभूमि में जन्म लेने से ही उसकी जो है वो भक्ति सफल हो जाती है और वो प्रभु के प्राप्त प्रभु के चरणों के समीप जीव पहुँचता है। क्योंकि मथुरा में आपने ये बताया कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ जहाँ वो कैवल्य का पति रसो वैशा कृष्ण है, वहाँ बतलाया है कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु तरे यहाँ अयोध्या के वासी, गोपिन के द्वार 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 का बसत यहाँ, बद्री केदार यहाँ बसत उदासी हैं, स्वर्ग और अपस्वर्ग को लेके करेंगे कहा हम तो श्री ब्रज मथुरा के वासी। तो महाराज ये कैवल्य के प्रयोजनम तो हमारे मथुरा में ही जो पधारे और जिनका जन्म हुआ, जिसने थोड़ी भी वो प्रसादी ली भक्ति की कीर्तन की, तो उसकी तो मुक्ति यहाँ आने से ही हो जाती है। बस मैं इतना ही आपकी सेवा।
मथुरा द्वारकाधीश प्राचार्येण सुधीमता, मथुरा ये द्वारकाधीश के प्राचार्य
मथुरा द्वारकाधीश प्राचार्येण सुधीमता व्याख्यातम भक्त वैशिष्ट्यम रामकृष्णेन शास्त्रिणा। श्री वसंतलाल जी शास्त्री
तनुभ्रताम तब पाद पद्मों ध्यानात भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किन्त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमाना। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, समुपस्थित गुरुकल्प विद्वान एवं महात्मा वृंद, वैष्णव वृंद, मातृकल्प एवं बहने, इतना कुछ आप सुन चुके हैं कि प्राचार्यों के द्वारा अभी यहाँ बैठे बैठे एक अर्थ मेरी बुद्धि को कदाच भगवान ने ही प्रेरित करके दिया है। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मं प्रसीदतु, बुद्धि के भी प्रेरक वही हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैंने किसी टीका में ये अर्थ नहीं देखा, किंतु बैठे बैठे आप सभी के दर्शन करके मुझे जो अर्थ उद्भूत हुआ है वो मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि मेरी समझ में संपूर्ण श्लोक ही विषय है, कोई एक पद कदाचित नहीं। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुद्वितीयम तम निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजन। चतुर्थ पद पे आपने बहुत अर्थ श्रवण किए हैं और कदाचित मैं भी कुछ विवक्षा लेके बैठा ही हूँ, लेकिन ये ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम कि अभी एक बात मेरे मन में आई कि ब्रह्म पद से यहाँ भगवान रसात्मा श्री कृष्ण को ग्रहण करें तो कैसा रहे, और आत्मा शब्द से यदि श्री राधा रानी को ग्रहण करें तो कैसा रहे। ब्रह्म आत्मा से राधिका, क्योंकि भगवान की आत्मा श्री राधा रानी को कहा ही गया है, अतः श्री राधा कृष्णयो एकत्व लक्षण युतम श्री भागवतम, ऐसा भी यदि अर्थ करें तो कैसा रहे। अभी बैठे बैठे मेरे मन में ये बात आई, मैंने आपको पहले ही निवेदन कर दिया, सभी विद्वान बैठे हैं, किसी टीका में ये अर्थ मैंने देखा नहीं है, इसलिए यदि कोई प्रमाण मांगे तो मैं क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। और मुझे कुछ बड़ा अद्भुत लग रहा है कि कैवल्य शब्द का अर्थ मोक्ष तो है ही करते हैं लोग, और है भी, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कैवल्य शब्द का अर्थ मोक्ष नहीं है। और कैवल्यैक प्रयोजनम से यदि मोक्ष इसका अर्थ माने तो मेरी समझ में वैष्णवेतर संप्रदाय तो मानते ही हैं, और यदि वैष्णव भी माने तो कदाचित मैंने एक वैष्णव से बंबई में श्रवण किया कि मोक्ष जो कैवल्य शब्द का अर्थ है तो मुक्ति के भी अनेक कल्प माने। कोई कहते हैं जल में जल का मिल जाना जैसे होता है, ऐसे ही जीव का भगवान में मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना, इसका नाम मुक्ति है। तो जल में जल बन करके ही लय होना, इसी का नाम मुक्ति है। मैं भी पहले ऐसा समझता था, पर उन्होंने मुझे बताया कि जल में एक अंगूर डालो, क्या वो जल में नहीं मिला है, पर जल में रहते हुए भी उसकी अपनी पृथक सत्ता है। तो सही वो जल में, क्या वो जल में मिला हुआ नहीं है, हमने जल में एक अंगूर डाला तो जल में तो वो मिल ही गया, जल में मिलते हुए भी उसकी अपनी सत्ता है, उसने अपनी सत्ता को नष्ट नहीं किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह, हम भगवान के नाम संकीर्तन में तन्मय हों, तन्मयता उनमें लय ही है एक प्रकार का, लेकिन अंगूर के जैसे पानी बन के कदाचित नहीं, क्योंकि उसमें जले निमग्नस्य जल पानवत क्या स्वाद आएगा। और भक्ति का वैशिष्ट्य तो सर्वथा ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मान्यताओं की बात है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा माने, तो किसी वस्तु को मान लेना दूसरी बात है और वास्तव में ही उसकी श्रेष्ठता होना ये दूसरी बात है। मेरी समझ में भक्ति की श्रेष्ठता मान लेने की चीज नहीं है, वो तो स्वभावतः वैसे ही सिद्ध है। और आप तो सब विज्ञ हैं, आपने कभी, मैंने तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं सुना कि किसी भक्त ने मोक्ष की इच्छा की हो, लेकिन ज्ञान मार्ग के भगवान शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती महाराज, अवश्य उन्होंने भक्ति की कामना की। और वृंदावन में यहाँ आके उन्होंने कहा, शठेन केना पिवयम हठेन दासी कृता गोप वधु विठेन। तो ज्ञान मार्गियों का भक्ति मार्ग में प्रवेश तो देखा, उनको भक्ति की कामना करते पाया, ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है। लेकिन किसी भक्त को मोक्ष के लिए हाथ फैलाते हुए हमारी दृष्टि में कोई दृष्टांत, मेरी दृष्टि में तो अभी तक नहीं आया, इसलिए सहज सिद्ध हो जाता है कि वो एक वैशिष्ट उसमें है, एक विशिष्ट पदार्थ है। और कैवल्य शब्द का जो अर्थ आपने श्रवण किया है प्राय करके सभी प्रवक्ताओं से, सभी महान भाव आचार्यों से, कि केवलस्य भाव कैवल्यम, केवल भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रयोजन है, क्योंकि अत्रान वर्ण्यते वीक्षणम सर्वात्मा भगवान हरि ही, ये स्पष्ट ही है। और वैसे भी मोक्ष को विशेष करके यहाँ व्रज में आदर नहीं ही दिया जाता, ये यहाँ की रज का भी कुछ वैशिष्ट्य है कि मुमुक्षु कोई यहाँ आता भी है तो बेचारा गिर ही पड़ता है। हमने अपने पूज्य गुरुजी के मुख से एक बात सुनी थी कि यहाँ मानसरोवर में, मानसरोवर है वृंदावन के निकट ही, वहाँ एक बार नारद ऋषि रो रहे थे। तो नारद ऋषि रो रहे थे तो उनसे ब्रह्मा जी महाराज ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो देवर्षि हैं, रो क्यों रहे, किसके लिए रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है। तो नारद ऋषि ने ही बतलाया कि जो मुक्त हो गए हैं उनके दुर्भाग्य को रो रहा। क्यों भैया, ऐसी क्या बात हुई? तो बोले मुक्त हो गए भाग्य ही, नहीं तो उनको यहाँ व्रजरज में खेलते हुए भगवान रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के अनेक रूप और लीलाओं के दर्शन का आनंद उनको प्राप्त होता, पर क्या करें, कदाच उनके भाग्य में ये था ही नहीं, इसलिए उनके दुर्भाग्य को रो रहा हूँ। इसलिए भक्ति का वैशिष्ट्य सिद्ध करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता, वो तो स्वतः सिद्ध है। और अधिक आप सब सुन ही रहे हैं, मैं भी उत्सुक हूँ सुनने के लिए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
अधिक तो आपने ही सुनाया, शास्त्रणा श्री वसंतेन, शास्त्रणा श्री वसंतेन ब्रह्मात्मत्व विवेचने, ब्रह्म आत्मा ब्रह्मात्मत्व विवेचने श्री राधा कृष्णयोरत्र व्याख्यातं भर्त दर्शन। अब हमारे तीन वक्ता रहे, शिव कुमार ब्रह्मचारी जी हैं, मैं उन ब्रह्मचारी जी से निवेदन करूंगा, श्री शिवानंद जी ब्रह्मचारी पधारे, और तीन वक्ता हो रहा हूँ, बोले बात। महाराज जी इन्हें भी बैठे रहने
दीजिए। गौरचंद्र असंख्य कोटि दंडवत प्रणति की असंख्य तदनंतर उपस्थित पूज्य वैष्णव जन विद्वत जन सभी के चरणों में मेरा सबसे प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मथुरा में हम लोगों को निवास करने का जैसे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी उस क्षण के बीच में आप सभी के महानुभवों का दर्शन यह भी अतिशय दुर्लभ है। आप लोगों के विचारों को सुन करके हृदय अतिशय हर्षोल्लास से आनंद से उच्छसित होता है। मैं इस सभागोष्ठी में कुछ कहने योग्य नहीं हूँ, फिर भी महाराज की आज्ञा ही बलवती है, इसलिए आप सभी लोग हमें क्षमा करेंगे। हम छोटे छोटे शब्दों में अपनी वाणी को व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। आज का विषय है जो विश्व वेदांत सारम जब ब्रह्म आत्मनि तत्त्व लक्षण वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम्। इस श्लोक में चारों पद देखने को मिलता है जिसमें चारों विषय पर वर्णन होता है। सबसे पहले जो कहा जा रहा है कैवल्यैक प्रयोजनम्, श्रीमद् कृष्ण दैवायन वेदव्यास जी वेदांत सूत्र में एक सूत्र वर्णन करते हैं कि लोकवत्तुल लीला कैवल्यम। भगवान की लीला कैसी है कि लोकवत् साधारण मनुष्य जैसे, किंतु साधारण मनुष्यों के जैसे नहीं है। भगवान निराकार स्वरूप है, उनकी लीलाएं मनुष्य जैसी लीलाएं, परंतु उनका जन्म कर्म अलौकिक दिव्यम अपरागितम अलौकिकम। सिद्धार्थ स्वामी पाद भी अलौकिक शब्द वर्णन करते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपरागित रूप से वर्णन किया है कि भगवान की लीलाएं अपरागित अलौकिक दिव्य। इसलिए यह लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वह लीला ही एकमात्र कैवल्य ही कैवल्य जानी, उसी की प्राप्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। इसको हम पीछे वर्णन करते हुए हम पहले यही कहेंगे सर्व वेदांत सार, ये श्रीमद् भागवत जो है समस्त वेदांत का सार। वेदों को हम चार भागों से देखते हैं, एक मंत्र भाग, दूसरा है ब्राह्मण भाग, जिसमें पद्याकार में वेदों में जो मंत्र संहिता का वर्णन उसको मंत्र भाग, और ब्राह्मण भाग में जिसमें गद्याकार में विधि विधान का वर्णन उसको ब्राह्मण भाग कहते हैं, तीसरा है आरण्य भाग, चौथा है उपनिषद भाग। आरण्य विभाग यहाँ पर अरण्यों में जंगलों में ऋषियों ने छात्रों को शिक्षा दी है, ब्रह्म विद्या का उपदेश। ऐसे ही उपनिषद विभाग यहाँ पर ब्रह्म विद्या का उपदेश, समस्त शास्त्र वेदों का सार जिसमें निचोड़ कर रखा गया है उसको उपनिषद कहते हैं, और उसी का सार संकलन करते हुए 550 सूत्रों में वेदांत सूत्र बना है जो कि श्रीमद् कृष्णदेवायन वेदव्यास जी ने लिखा है, जिसमें कि अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करके इसमें 550 सूत्रों में ये समस्त वर्णन हुआ है। तो उसी में ये देखा जाता है कि श्रीमद् भागवत जो है समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदांत का सबका सार निचोड़ है। इसलिए श्रीमद् भागवत को निर्गुण शास्त्र और दशम लक्षण युक्त श्रीमद् भागवत को समस्त गुणों से अतीत विशुद्ध निर्गुण शास्त्र माना गया। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है श्रीमद् कृष्ण दैवायन के वेदव्यास जी के कई मस्तिष्क का उपज नहीं, यह है समाधि भाषा। जैसे समाधि में उन्होंने दर्शन किया उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रत्नों को उन्होंने प्रकाशित किया। इस प्रकार जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है सर्व प्रमाण शिरोमणि ग्रंथ, उसमें क्या वर्णन करते हैं वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम ब्रह्म आत्मैकत्व लक्षण। वस्तु अद्वितीय श्रीमद् भागवत के उपक्रम में पहले ही हम देखते हैं कि वस्तु वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवलम, वास्तव वस्तु ही एकमात्र वेद्य। अब वास्तव वस्तु माने क्या होता है, वास्तव शब्द से वस्तु धातु उत्पत्ति करके वास्तव शब्द जिसका अस्तित्व और नित्य सत्ता और प्रतिति उनको वस्तु माना गया। ऐसे जो नित्य सत्य वस्तु है जिसको भक्ति भक्त और भगवान तीनों ने ही लिया गया है कि तीनों वस्तु का ही निर्माण श्रीमद् भागवत में किया जा रहा है, एक और भगवान का भगवान की विशेषता, भगवान भगवत स्वरूप की चमत्कारिता, भक्ति की महिमा, भक्तों का वैशिष्ट इस प्रकार, और भक्ति का प्रेम, ये भक्ति का तात्म इत्यादि से दिखाया गया। तो इसमें वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, और उसी को उपसंहार में कहते हैं कि अद्वितीय वस्तु जिसको जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा, इसमें वर्णन किया है कि तत्त्व जिज्ञासा क्या है। तो उसमें कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम्। अद्वयम् परतत्त्व की बातें कही है, वह अद्वयम् परतत्त्व जो तत्वविद विद्वानों ने वर्णन किया है, तो वह अद्वयम् परतत्त्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, ब्रह्म शब्द से, परमात्मा शब्द से, भगवान शब्द से जिनको कहा करते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों भी कोई अलग अलग पृथक पृथक नहीं है, तीनों ही एक ही स्वरूप के क्रम विकास में वैशिष्ट चमत्कारिता दिखाया गया, जिनके अंग ज्योति को ही ब्रह्म शब्द से कहा है। जैसे जिनके उपनिषदि तदपश्यत अनुभा जस्य ब्रह्मेति संगा कचिदपि निगमे जाते चिन्ह मात्र सत्या पंशोजस्यां सदैर सैर विभवति वशयन नैव मायां पुमांश्च। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं निगम शास्त्र में जिनको चिन्ह मात्र सत्ता के रूप में वर्णन किया है वह है ब्रह्म। अंश सर्व परमात्मा जो अंतर्यामी है वह है परमात्मा, और जो सर्विद ऐश्वर्य के निलय, जो माधुर्य ऐश्वर्य के खान है, रसघन ब्रह्म है, रसघन विग्रह वे है भगवान श्री कृष्ण, जिनको कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा। इस प्रकार वस्तु शब्द से भगवान की भगवत्ता का प्रतिपादन करते हुए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसी को परिभाषा शब्द के द्वारा नियमित कर दिया कि स्वयं भगवान कौन है? एकमात्र भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। जैसे तम निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् वेदांतमेका, उनकी निष्ठा ही एकमात्र प्रयोजन, उसी को ही कहा है कि भक्ति जो है केवल भक्ति प्रेम तक ही सीमित नहीं है। भक्ति की परिभाषा में हमारे आचार्य लोगों ने तो यह वर्णन किया है कि श्रद्धा से लेकर के साधु संघ गुरु पदाश्रय भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भावावस्था, इसके बाद प्रेम, और प्रेम की अवस्था में भी वर्णन करते हुए दिखाया श्रीमद्भागवत जी ने कि प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महा रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मोहन मादन, इस प्रकार मादनक का महाभाव की जो पराकाष्ठा है वह दिखाया गया है। जैसे श्रीमद् भागवत जी में हम देखते हैं कि नित्य युयाम दुरापम गोप्यस्य कृष्ण मुपलभ्य चिराद भेष्टम जत प्रेक्षण दिशिशु पक्ष कृताम सपन्ति तद्भावं मापुर अपि नित्य युयाम दुरापम। गोपियां उस भाव को कृष्ण दर्शन में चिर विरह में उत्कंठिता, तो गोपियां उस भाव को प्राप्त हुई कि शुद्ध बुद्ध खो बैठे, ऐसी तन्मय स्थिति है जहाँ की उनको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस स्थिति में। नित्य युयाम दुरापम, नित्य युयाम का अर्थ कहते हुए हमारे आचार्य लोगों ने यही कहा है कि नित्य युयाम नित्य संयोग में रहने वाले जो ब्रह्मा शिवादि देवता लोग, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र, और नित्य युयाम जो की महिषियां हैं द्वारका की नित्य संयोगिनी महिषियां, उनके लिए भी जो भाव दुर्लभ है वह परम विशुद्ध भाव को गोपियों ने प्राप्त किया है कि महाभाव की पराकाष्ठा में पहुंची। श्रीमद्भागवत जी ने इस महाभाव की पराकाष्ठा को लक्ष्य किया है, उसी को दिखाया। जब ब्रह्म आत्मिकत्व लक्षण, अभी अभी पूर्ववर्ता जी ने जैसे ब्रह्म और आत्मा का राधा और कृष्ण से संबंध किया है, दोनों का मिलन रूप जो प्रेम विवर्त की स्थिति है, यह प्रेम विवर्त की स्थिति का वर्णन श्रीमद्भागवत जी ने किया है। इसी को ही कहा है लोकवत्तो लीला कैवल्यम, लीला कथा असन ही सेवन अंतरे, बिना लीला कथा रस के सेवन के कोई उपाय नहीं है, इसलिए लीला कथा ही हमारे लिए एकमात्र पद का एकमात्र आस्वादनीय है। अतः यहाँ पर केवल ब्रह्म शब्द के द्वारा निर्विशेष कल्पना में ब्रह्मवाद में केवल मोक्ष का ही यहाँ पर किसी भी शास्त्रों में वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उपक्रम श्लोक में देखा जाता है धर्म प्रोच्छित कैतव अर्थ कैतव धर्म प्रोच्छित प्रतिष्ठ रूपेण उच्छित उच्छित जाने परित मोक्षादिवीर अभी सीधा साक्षात्कार करते हैं कि मोक्षादिवीर अभी मुक्ति तत्व मोक्ष तत्व भी कपट धर्म कई तब धर्म में वर्णन करते हुए उसको श्रीमद् भागवत जी ने परित्याग किया। यहाँ तक कि दशम स्कंध के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति में प्रार्थना करते हुए कहा है अज्ञान संगो भगवंद मोक्ष, मुक्ति को भी एक अज्ञान संयोग बताया गया है। इस प्रकार तो किसी भी भक्त कोई भी भक्त ने किसी भी प्रकार से मुक्ति को स्वीकार नहीं किया है भगवान के देने पर भी। इस प्रकार मुक्ति सुख को तुच्छ करके मुक्ति को दूर करते हुए कैवल्यवाद जो निर्विशेष कल्पनामय बात है उसको परित्याग करते हुए श्रीमद् भागवत में शक्ति परिणाम बात की घोषणा की है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में भगवान नित्य शक्ति से युक्त है जो कि रीते अर्थम जत प्रतियत न प्रतियत चात मणि तत विद्या आत्मायाम जथा भाषो जथा तम। त्रिविध शक्ति का वर्णन करते हुए आत्ममाया स्वरूप शक्ति के साथ भगवान नित्य लीला विलास परायण है, अतः उस लीला ही एकमात्र कैवल्यम है। लोग वत्तु लीला कैवल्यम में इतना कहकर
कृष्णोपाध्याय शास्त्री ब्रह्मचारी समायातः शिवानंद नाम कहूं या शिवानंद दायक, मैंने रखा है शिव के लिए भी जो आनंद दे क्यों यहां तो शिवजी ही परम वैष्णव है ना, तो ब्रह्मचारी समायातः मुझे तो लगा है शिवजी को भी आनंद देने आ गए। ब्रह्मचारी समायातः श्री शिवानंद दायक न को नामक लोकवत लोकवत लीला कैवल्यम लोकवत ब्रह्म सूत्रस्य कैवल्यम वर्णय श्री कृष्ण उपाय
नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधा धन सुधा पवन शालिने बनमारिने। अभी ब्रह्म श्री कृष्ण की वंदना हुई, अब मैं आत्मा राधा की वंदना में एक छंद और पढ़ रहा हूँ। हारणीं दोष कोषाणं तारणीं भववार्धे कारणीं संपदां वंदे वृंदावन विहारिणी। हारिणीं दोष कोषाणं शास्त्र शब्द तो मुझसे जुड़ा हुआ है लेकिन मैं उस पथ से बहुत दूर फिसला हुआ व्यक्ति, राजकीय विद्यालय में अध्यापन करता रहा और बालधक के मुनिवृत्ति नाम अब कुछ कभी कभी भागवत इत्यादि ग्रंथों का अवलोकन कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा सुना है आप सब लोगों के सज्जनों के कृपा से, कुछ हिंदी में ही मैं तो बोल पाऊंगा। अभी सभी विद्वानों में शब्दानाम धातु नाम अनेकार्थ इस बात से इस कैवल्य शब्द के अनेक अर्थ किए। मोक्ष अर्थ ब्रज में तो चल ही नहीं सकता, ब्रज में तो कैवल्य का केवल एक अर्थ है प्रेम। यहाँ तो प्रेमा भक्ति द्वारा ही हम श्रीमद् भागवत के तत्व का निचोड़, उसका सार, उसका रस ग्रहण कर सकते। श्रीमद् भागवत के भी पक्ष में सभी लोगों ने ये कहा है कि यहाँ केवल भक्ति ही प्रधान है और भक्ति बिना प्रेम के संभव नहीं। भक्ति बिना प्रेम के संभव नहीं और प्रेम बिना त्याग के संभव। हम उस प्रभु के लिए सर्वस्व समर्पण की जब भावना ले आए अपने अंदर, तभी प्रेम होता है और वह प्रेम उस ईश्वर श्री कृष्ण के लिए ही होना संभव है। वह श्री कृष्ण ही उस प्रेम का परम पात्र। आज हमारा सारा साहित्य, चाहे वो भागवत से संबंधित हो, चाहे वो ब्रजभाषा से संबंधित हो, वह प्रेम का ही प्रतिपादन करता है। हमारे श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं, चाहे वो देवकी वसुदेव हो, चाहे नंद यशोदा हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे गाय बछड़े हो, चाहे गोपी गोपाल हो और चाहे कुब्जा हो या रुक्मिणी हो, सबका श्री कृष्ण से संबंध केवल प्रेम के कारण हुआ है। वह प्रेम भक्ति के कारण हुआ है। अगर उनमें वह प्रेम नहीं होता तो वह उन श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में सर्वथा असमर्थ। आज हम सब लोग भी उसे केवल प्रेम से ही प्राप्त कर सकते, केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं और वही मेरी समझ में कई वाली है। दो एक छंद में हिंदी के ब्रजभाषा के मुख्य रूप से लिखता रहा हूं। वेदों के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद संस्कृत या संस्कृत के बाद प्राकृत और उन सब का निचोड़ है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा से ही हिंदी भाषा। तो खोर सांकरी को चोर, चोरन में सिर मोर, और नहीं ढोता नंद नौ नौ लाख खूंटे को। जिसके 9 लाख खूंटे थे नंद बाबा के, उसका बेटा, और नहीं ढोता नंद नौ नौ लाख खूंटे को और वेद विद विप्रन को प्यारो पतियारो यार और बैठा भक्त चित्तन के आसन में अनूठे को। के काम दही डारे ढीठ, दही दही और दही जला, काम दही डारे ढीठ मोह मही ढारे और मोह को मही माने धरती में और मही माने मठर, मोह मही डारे और कहबो कहा लौनी के हसूते को, क्रोध घट फूटे हटे मायापट दीखे तब विश्व के रंगीले में रंग है कलूटे को, विश्व के रंगीले घोर सागरी को चोर, चोरन में सिर मोर और नहीं ढोता नंद नौ नौ लाख ढूंढे को, वेद विद विप्रन को प्यारो पतियारो यार और बैठा भक्त चित्तन के आसन अनूठे को, काम दह डारे ढीठ मोह मह ढारे और कहबो कहा लोभ की लौनी के सूटे को, क्रोध घट फूटे हटे माया पट दीखे तो विश्व के रंगीलिन में रंग है कलू। वह कलूटा श्री कृष्ण भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही प्राप्त है। एक छोटा सा दोहा और कहूंगा मैं। कबऊ खल बांधे, कभी उन भगवान ने बड़े बड़े खलों को दुष्टों को बांधा, कबऊ खल बांधे बंधे अब उखल में आए, कब उखल बांधे बंधे अब उखल में आए। मुकत चहत जो आपनी, हे प्रभु अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं तो करो नाम निज जाप। तो आप अब अपने ही नाम का जाप करें तभी आपकी मुक्ति होगी। तो जो नाम का जाप उस भगवान की मुक्ति करा सकता है वह हमारी आपकी क्यों नहीं कराएगा। इसलिए मैं तो केवल के अर्थ में केवल प्रेम को, उस श्री कृष्ण के प्रेम को ही समझता
हूँ। श्री मनोहर जी शास्त्री कृष्ण गोपाल वर्येण कृष्ण गोपाल वर्येण शास्त्रनाथ चात्र धीमता व्याख्यानम प्रस्तुतम सम्यक व्याख्यानम प्रस्तुतम सम्यक राधाया मंगलम। शरद आप दो घंटे रहे
भाषा तो विरम्य हिंदी भाषायामेव हृदगतान् भावान्
प्रकृति करोमि च क्षन्तव्यं विद्वत्ति। देखिए इस श्लोक में बताया सर्व वेदांत सारम। पहले वेदांत शब्द के वेद का विचार करें। वेद शब्द बनने के बाद वेदांत शब्द का निर्माण हुआ। प्रथमं वेदः ततो वेदांत शब्द। तो वेद का सार क्या क्या है? तो भगवान ब्रह्म काष्ठेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदर्थ्य वश्यत कूटस्थो रतरात्मन यतो भवेत्। भगवान द्वितीय स्कंध का श्लोक है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान से वेद को पढ़कर उसका अपनी बुद्धि से तीन बार विचार किया। त्रिवारम अन्वीक्ष्य विचार्य मनीषया बुद्ध्या। उसका निष्कर्ष क्या निकाला? तदध्यवश्यत कूटस्थः। कूटस्थः ब्रह्मा तत् अध्यवश्यत। इत निश्चितवान। यह निश्चय किया कि वेदों का तात्पर्य क्या है कि रतरात्मन यतो भवेत् यतः यस्मात् कारणात् आत्मनि सर्वेषाम आत्मनि रसात्मके श्री कृष्णे रतिर् भवेत् इति सर्व वेदार्थः। संपूर्ण वेद का अर्थ है भगवान में प्रेम हो जाना। और जब नारद जी ने भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और सुनाते समय ब्रह्मा जी ने एक बात कही, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संयुक्त।